श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 23। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। श्रीला बलदेव विद्या श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से हम थोड़ा पहले देख रहे हैं, फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे। जीव के बारे में भगवान ने कुछ श्लोकों में चर्चा करी है पिछले, और अब भगवान यहाँ पे परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। भगवान ने परमात्मा के बारे में काफी विशद रूप से वर्णन किया था 13वें से लेकर के 18वें श्लोक तक, लेकिन यहाँ पे इन व्याख्यान के द्वारा समझ लेना चाहिए कि भगवान स्पष्ट दिखाना चाहते हैं कि परमात्मा सभी जीवों के शरीर में है, सभी शरीरों में जीवों के साथ जीवों के संग रहता है, लेकिन जीव से भिन्न है। इसलिए यहाँ पे लिखा है परमात्मेति च अपि, अपि मतलब भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं और जीव से अलग के रूप में रहते हैं, ये रहता है और ये भी रहते हैं। तो ये भी रहने का अर्थ ये नहीं है कि दोनों एक ही हैं, ये भी का अर्थ है कि ये इनसे अलग हैं। तो परमात्मा भी रहते हैं शरीर में, लेकिन वो आत्मा से अलग हैं। वो क्या कार्य कर रहे हैं उसके बारे में भी भगवान ने बताया है। तो इस शरीर में एक और पुरुष रहते हैं जो परमात्मा कहा जाता है। यहां शब्द आया है परमात्मा इति च अपि उक्तः, उक्तः मतलब बोला जाता है, तो उनको परमात्मा कहा जाता है। तो वो भी रहते हैं शरीर में और परमात्मा भगवान के स्व अंश हैं, विष्णु तत्व हैं। ये जो है परम शब्द से सूचित होता है। परमात्मा में परम शब्द का अर्थ ही है प्रकृति से परे, तो इसलिए वो भगवान के स्व अंश हैं, जीव से भिन्न। और इसलिए इस सिद्धांत का खंडन होता है जो कहता है कि जीव और भगवान में परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। वही साक्षी हैं, शब्द आया है दृष्टा, और जीव के बहुत पास में, उपदृष्टा मतलब बिल्कुल पास में रह करके साक्षी हैं। कोई व्यक्ति बहुत दूर से भी साक्षी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उप शब्द से अर्थ है कि जीव के एकदम क्लोज में साक्षी हैं, लेकिन उनसे अलग है। उनसे अलग है मतलब जीव से अलग है। वो अनुमंता हैं, अर्थात जीव के ऊपर वो कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, उनके एकदम पास में रहते हुए। श्रुतियां कहती भी हैं साक्षी चेतः केवलो निर्गुणश्च, वही साक्षी हैं, वो चेतना से युक्त हैं, शुद्ध हैं और भौतिक गुणों के परे हैं। गोपाल तपनी उपनिषद का श्लोक है। और वही जीव के भर्ता अर्थात उसके उसको सहारा देने वाले हैं, और भोक्ता यानी कि जीव के संरक्षक भी हैं। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के संग साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। तो ये आपको याद आ रहा होगा, परम शब्द अर्थात भगवान के स्व अंश विष्णु तत्व, वह समान जीव नहीं है। क्योंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि आत्मा जब मुक्त हो जाएगी तो परमात्मा में लीन हो जाएगी और परमात्मा ही बन जाएगी। ये बिल्कुल गलत धारणा है। आत्मा और परमात्मा का व्यक्तित्व हमेशा रहता है, दोनों ही अविनाशी हैं, लेकिन परमात्मा की स्थिति जीवात्मा से अलग है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान है, वे जीवात्मा से भिन्न है, वे पर हैं, दिव्य हैं। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने के वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी अनुमति दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। जीवात्मा के रूप में हम इस शरीर के कार्यकलापों को भोग रहे हैं और इसके कारण कर्म बंधन में फंस रहे हैं, लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में जब शरीर में रहते हैं तो उनका ज्ञान हमारी तरह नहीं होता है कि जो ज्ञान शरीर की क्रियाओं की वजह से, कार्यकलापों की वजह से ढक जाए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा बात, वो क्या कर रहे हैं? साक्षी के रूप में वो देख रहे हैं कि जीव क्या इच्छा कर रहा है, भोग की इच्छा कर रहा है या भक्ति प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है, जो भी इच्छा कर रहा है उसको वो देखते हैं और उसके पूर्वगत किए गए कर्मों से के अनुसार उसको अनुमति देते हैं। जब भगवान अनुमति देते हैं तभी कोई जीव कार्य कर सकता है, चाहे वो भक्ति का कार्य हो और चाहे वो भोग का कार्य हो। तो ये दो कार्य भगवान कर रहे हैं लेकिन उससे निर्लिप्त रहते हैं, वो केवल कह सकते हैं निष्पक्ष रहते हैं। क्या शब्द बोला जाएगा, अनइन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश में बोलेंगे, उससे प्रभावित नहीं होते। जीव चाहे कितने भी बुरे कर्म करे भगवान उसमें रहते हैं और उससे प्रभावित नहीं होते, वो केवल उसके विगत कर्मों और इच्छाओं के अनुसार उसको अनुमति देते हैं करने के लिए। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं, वह दिव्य है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। अब तक तो अर्थ आप समझ गए होंगे अंतर क्या है। आत्मा बद्ध है और आत्मा शरीर में लिप्त हो जाता है, लेकिन परमात्मा पूरी तरह से निर्लिप्त है और शरीर को कंट्रोल करने वाले वही हैं। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। चूंकि परमात्मा परमेश्वर हैं अतएव वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक हैं। जीव अनंत हैं और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करता है करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे सीखा है कि अगर हम कुछ भोग भी करना चाहते हैं उसकी अलावेंस या उसकी अनुमति भी भगवान ही देते हैं। जब भगवान देखते हैं तभी हम देख सकते हैं, जब भगवान सुनते हैं तो हम सुन सकते हैं। हमारी इंद्रियों में अलग से कुछ कार्य करने की शक्ति नहीं है, तो भक्ति तो है ही, लेकिन भक्ति करने की शक्ति तो है ही, लेकिन भोग करने की शक्ति के लिए भी भगवान से आती है, भगवान पर ही निर्भर करते हैं। तो उस प्रकार से व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी संबंध में एक व्यक्ति को बोलते थे जो शराब पीता था कि तुम शराब भी पीते हो तो ये स्मरण करो कि ये शराब जो है वो कृष्ण की कृपा से तुम्हारे पास आई है, इस प्रकार से तुम्हारी कृष्ण चेतना का विकास होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि हर प्रकार से हर स्थिति में हम लोग भगवान के ऊपर निर्भर हैं। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म की प्रवृत्ति पाई जाती है, और चूंकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है अतएव वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति कहलाता है। थोड़ा समझ लेना चाहिए इस चीज को। पहली बात यह कि कितना घनिष्ठता पूर्वक संबंध है कि जीव ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, इतना कोई बुरा कार्य नहीं कर सकता है कि परमात्मा के रूप में भगवान उसके हृदय को छोड़ दें। तो ये दिखाता है भगवान का असीमित प्रेम। जीव अनादि काल से भगवान को भूला हुआ है और भगवान के विरुद्ध कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान बड़ी सहिष्णु होकर के धैर्य से उसके शरीर में रहते हैं और उसको भोग की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं, वो कार्य करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं जो उससे जो जीव को उनसे विमुख करेगा। क्योंकि भगवान जीव से प्रेम करते हैं और प्रेम में बाध्यता नहीं होती है, प्रेम में फोर्स नहीं होता है। तो भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कब हम उनकी तरफ उन्मुख होंगे, और उनके प्रेम के कारण सहज उनका जो प्रेम है जीव के प्रति वो जीव को अलाउ करते हैं, हम लोग को अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं कि हम चाहे तो भोग कर सकते हैं, चाहे उनकी और उन्मुख हो सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्योंकि जीव तटस्थता शक्ति है, अर्थात उसके पास ये चॉइस रहती है कि वो कृष्ण की शरणागत हो या ना हो। हमारी स्वतंत्रता केवल इसी बात पे है कि आज इस क्षण मैं कृष्ण की सेवा करूं या माया की सेवा करूं या माया पे प्रभुत्व जताने की प्रयास करूं। तो इसी कारण से जितनी मात्रा में हम इस इच्छा का दुरुपयोग करते हैं उतना ही मात्रा में हम जगत में और फंसते चले जाते हैं। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है और ये इसकी खुद की इच्छा के अनुसार होता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है तब तक परमेश्वर मित्र के रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सकें। अर्थात भगवान देखते रहते हैं कि किस प्रकार से कोई थोड़ी बहुत सेवा अनजाने में कर दे या कृष्णोन्मुख होने की कुछ कार्य कर दे अनजान में भी, तो भगवान उस बहाने से उसको और प्रेरणा देंगे आगे जाकर और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे। भगवान बेसिकली ये सोच रहे हैं कि कभी तो जीव इच्छा करे उनकी तरफ उन्मुख होने के लिए, और जब वो इच्छा करेगा, कभी भी किसी जन्म में भी इच्छा करता है, तो भगवान उसको और मौके देते चले जाते हैं ताकि वो भगवान की और भक्ति करता रहे। इसी कारण से कभी भगवान उसके हृदय से जाते नहीं है, हमारे हृदय से जाते नहीं है। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी रहोगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। तो अभी देख रहे हैं कि भगवान जीव की जीवन में शास्त्र के द्वारा आते हैं। माया मुग्ध जीव नाहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। तो माया से मुग्ध जीव है वो कृष्ण के स्वभाव और उनके किसी भी सद्गुण को नहीं समझता है, तो इसलिए भगवान शास्त्र के द्वारा जीव के जीवन में आते हैं और उसको उस शास्त्र के द्वारा, साधु के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं कि भगवान की शरणागति स्वीकार करना ही उसके लिए आत्यंतिक क्षेम, आत्यंतिक कल्याण का मार्ग है। और जब हम इस प्रकार से भगवान की बात पर श्रद्धा रखकर, भगवद्गीता पे के अनुसार श्रद्धा रख करके, उस पर श्रद्धा रख करके हम अपने जीवन को मोड़ लेते हैं, जीवन को उसके अनुसार चलाते हैं, तो फिर निश्चित रूप से वैकुंठ का मार्ग खुला रहता है। तो आप देख सकते हैं कि किसी जीव के लिए ऊपर सबसे बड़ी कृपा का तरीका यही है कि उसको शास्त्रों का सदउपदेश दिया जाए, मनगढ़ंत उपदेश न दे करके परंपरागत तरीके से गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको दिया जाए, तो वो ठीक प्रकार से इस ज्ञान को स्वीकार कर पाएगा और भगवान की स्थिति और अपनी स्थिति को समझ करके भगवान की तरफ शरणागत होगा। तो इस बात को इन श्लोकों से हम ही समझ रहे हैं। इस श्लोक से हमने ये सीखा कि भगवान दिव्य भोक्ता हैं, वही ईश्वर हैं, वही कंट्रोलर हैं, वही परम स्वामी हैं, साक्षी हैं और अनुमति देने वाले हैं, और हम हर क्रिया के लिए उन पर ही निर्भर हैं। तो इस बात को स्वीकार करके अपनी हर क्रिया को उनको समर्पित करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, उनको सुख देने वाली क्रियाएं करनी चाहिए, इससे ही हमारी परम गति होगी।